और फिर उसका रिजल्ट जो है,
और भगवान ने तीन चीज बोला था उनको, आप करते समय हलाहल निकलेगा लेकिन आप भयभीत मत हो जाना, वो बोला उन्होंने। और जब कुछ अनेक बेंट निकलेंगे समुद्र से अनेक, तो उसको क्या करना चाहिए,
उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है,
लेकिन आपको छूना ही नहीं चाहिए उसको,
छूना ही नहीं है।
अगर असुर लोग लेंगे या नहीं लेंगे या परवाह मत करो, लेकिन तुम नहीं छूना चाहिए उसको, ऐसे बोला। तो उनके लिए काम मत रखो, भयभीत भी मत हो जाओ, काम भी मत रखो, दूसरा बोला। और तीसरा बोला कि क्रोधित मत हो जाओ, उनके साथ कालर पकड़ झगड़ा मत करो, ऐसा क्रोधित मत हो जाओ। तीन चीज बोला उन्होंने, काम क्रोध और भय, जिनों को छोड़ो, देवताओं को भगवान ने बताया। अभी आगे क्या हुआ?
तो फिर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ।
हाँ।
और दोनों देवता और असुर दोनों ही ये कार्य को एक साथ और पूरी शक्ति के साथ लग गए।
करेक्ट।
परंतु वो जो माथानी थी वो हिल नहीं रही थी, क्योंकि भगवान ने फिर उसको हिलाना शुरू किया, मतलब स्वयं भगवान ही मथानी के नीचे
एक कछुआ बने, भगवान नीचे कछुआ बने, ऊपर अजीत बने, और वासुकी को सुला दिया, और देवताओं के अंदर सत्वगुण को प्रदान किया, असुरों को रजोगुण प्रदान,
असुरों को भी रजोगुण प्रदान किया, उनको भी शक्ति प्रदान की,
शक्ति प्रदान किया भगवान,
तो सभी को भगवान ने शक्ति प्रदान की।
इस तरह जैसे माता ने बोला, हम सबको भी सब सेवाओं को करने के लिए शक्ति प्रदान करने वाले कौन है? भगवान ने। वो बात हमें समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बड़ा किया है। अगर हम कभी कभी हमारे भक्तों के बीच में स्पर्धा हो जाता है कि हमें नाम यश प्राप्त होना चाहिए, हमको स्टेज में बुलाकर कुछ गिफ्ट देना चाहिए, हमने किया, सब लोग ऐसे बोलते हैं। अगर कुछ अच्छा ही हो गया ना, सब लोग अपने छाती में मारकर बोलेंगे हमने किया। कुछ गलत ही हो गया तो बोलेंगे उसने किया, ऐसे बोलेंगे, है ना। तो ये लोगों का आदत होता है इस दुनिया में। तो इसलिए भगवान ने बोला कि तुम कुछ भी क्रेडिट मत लो, क्रेडिट को भगवान को दे दो। तो भगवान ने ये सब किया। आगे क्या हुआ? सब पुरस्कार निकलने लगा, सब विविध बेंट निकलने लगा, तभी क्या हुआ?
तो सबसे पहले तो हलाल निकला,
हलाहल निकला, तभी क्या हुआ?
तो भगवान
हलाहल निकले के पहले कुछ हुआ, तो अचानक देवता तो काम कर रहे थे, लेकिन असुर लोगों ने मना किया कि हम नहीं करेंगे अभी समुद्र मंथन। आपको कारण मालूम है क्यों उन्होंने ऐसे डाल दिया? वो वासुकी के पूंछ को डाल दिया उन्होंने नीचे, बोला कि हम नहीं करेंगे अभी।
हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि जो अच्छी साइड है वो हमें मिले।
हाँ, अच्छी साइड क्या सोचा उन्होंने?
जो मुख है।
हाँ, उन्होंने बोला कि हे विष्णु, देखो कि कैसे पक्षपात करता है, उनको मुख दिया है और हमको पूंछ दिया है, अहेर पुच्छम अमंगलम, बोला उन्होंने। ये अही का पुच्छ जो है, पूंछ, इस तरह कुछ लोग बोलते हैं, देखो वो गुरुजी उनको बुलाया स्टेज में, उनको पुरस्कार किया, लाइट के सामने उनको दिया, फोटो भी मारा उनका, क्लिक भी किया उनका, लेकिन हमको बोला किचन में काम करो, पीछे करो, पूंछ का काम करो, ऐसे हमको, हम पीछे करते, हमको पूछने वाले कोई नहीं, हम पूंछ में है, ऐसे वो सोच रहता है, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं ऐसे। तो असुर लोगों ने ऐसे बोला कि विष्णु को बोला हम बायकॉट करते हैं अभी हम। तो विष्णु ने पूछा देवताओं को, देखो ये लोग बोल रहे हैं कि इनको सर चाहिए और आप लोग क्या पूंछ में कर सकते हो। देवताओं ने क्या बोला मालूम?
हाँ।
देवता बोला विष्णु जी, आप जो बोलेंगे हम करेंगे,
हम वही करेंगे,
जिधर आप हमको सेवा देंगे हम करेंगे,
हम वही करेंगे। तो यही सेवा भाव है।
हाँ, ये सेवा भाव है,
जो मिलेगा कृष्ण की कृपा समझे, गुरु की कृपा, उसको करना चाहिए,
करना चाहिए,
ऑनेस्टली करना चाहिए।
हाँ, तो अभी जब मंथन हुआ, तभी वासुकी के मुंह से क्या निकला?
विष निकला था ना।
हाँ, वासुकी मुंह से विष भी निकला और धुआं भी निकला, उसके कारण नुकसान किसको हुआ?
असुरों को।
हाँ, क्योंकि असुरों ने मांग कर लिया मुंह, तो उनको मुंह के ऊपर ही धुआं आ गया उनको, है ना, मुंह से निकलने लगा। मूर्ख लोग थे ना, क्योंकि डिमांड करके लिया उन्होंने मुंह, लेकिन उनको धुआं पीना पड़ा उनको, तो सब बेहोश होकर पड़े। हा? तो भगवान ने उसके बाद वासुकी को सुला दिया भगवान ने। तो उसके आगे आपने जो बोला वो सही है, विष निकला। तभी सब असुर लोग डर गए, देवता भी डर गए, असुर भी डर गए, लेकिन भगवान ने बोला था चिंता मत करो, मैं आयोजन करूंगा। क्या आयोजन किया था भगवान ने?
शिव जी को।
हाँ, शिव जी आकर हलाहल को लेकर वो पी लिया। उसके बाद क्या हुआ? इस तरह हमारे प्रोजेक्ट में भी ऐसा मत सोचिए कि साहब एकदम जैसे कमल के, कभी कभी कमल से बना हुआ रास्ता होगा तो कितना अच्छा रहेगा। हमारे जीवन में ऐसा नहीं रहेगा है कि सब एकदम आसानी से चलेगा, समस्याएं आएंगे हलाहल जैसे। हम भगवान के ऊपर निर्भर रहकर उनको पार करके हमें आगे जाना पड़ेगा। हमें वो पॉइंट है उसका, हमारे हृदय में भी अनर्थ निकलते हैं, अनर्थ निवृत्ति के बाद ही हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, वो पॉइंट है। उसके आगे क्या हुआ, विविध बेंट निकलने लगे, जैसे उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा और ऐरावत नाम का एक हाथी, रमा नाम के एक लक्ष्मी, ऐसे विविध चीज निकलने लगा। वरुणी नाम के एक स्त्री निकल रही थी, तो ये असुर लोग जाकर वरुणी को ले लिया उन्होंने, लेकिन देवता ने किस लिया उन्होंने, कुछ नहीं लिया देवता। उससे हम क्या समझते हैं, आप बताते हैं माता जी, देवता ने कुछ नहीं छुया किसी भी चीज को,
क्योंकि पहले ही भगवान ने कहा था कि आपको कुछ छूना नहीं है, तो उन्होंने आज्ञा का पालन किया।
आज्ञा का पालन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम तब तक आज्ञा पालन करते हैं जब तक कुछ बड़ी चीज नहीं होता है, कुछ बड़ा चीज होता है तो हम आज्ञा को भी हम बोल जाते हैं, साइड में बाजू में रख देते हैं और खुद के नाम यश को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे ये लोगों ने देखा, इंद्र ने देखा ऐरावत को, सोचा कि कितना अच्छा होता ये ऐरावत मुझे मिलता तो, लेकिन उन्होंने लिया नहीं जब तक विष्णु ने नहीं दिया उनको। तो हमारे जीवन में भी हम लोग कभी कभी दो चार लोग साथ में आकर कुछ सेवा करते हैं, लेकिन एक भक्त को इच्छा होता है कि मैं पहले जाकर गुरु को बोल दूं कि मैंने ये सेवा पूरा मैंने ही किया है, बाकी लोग सिर्फ साथ थे। ऐसे कभी कभी आप देखेंगे फोटो निकालते समय, जैसे हमने एक पॉलिटिशियन को बुलाया था एक कार्यक्रम के लिए, तो उसमें हमने देखा अनेक लोगों को साथ में फोटो लेने की इच्छा है, वो व्यक्ति के साथ खड़े होकर, क्योंकि वो बाद में जाकर दिखाएंगे लोगों को, देखो हमारा भी फोटो है उसके साथ। ऐसे इस तरह कभी कभी लोगों को इच्छा होता है कि बाकी लोगों को बाद में करो और खुद को सामने करो, लेकिन ये देवता लोग जो थे उन्होंने आज्ञाकारी थे, भगवान ने बोला है छुओ मत, जितना भी मन मांगे, मन पागल हो जाए, फिर भी उन्होंने लूट कर लिया नहीं। तो आज्ञाकारी, आज्ञा को पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्त को, वो बात हम सीखते हैं। तो आगे जाकर क्या हुआ, उसके बाद धन्वंतरी आ गए। हाँ, उस समय क्या हुआ, धन्वंतरी जब निकले
कलश लेकर आए।
हाँ, कलश लेकर निकले वो, उसमें अमृत था कलश में,
उसमें अमृत था। और फिर देवताओं असुर जो है वो भागने लगे अमृत कलश लेकर।
हाँ, अमृत कलश को छीन लिया उन्होंने,
छीन
कर भाग गए, दूर भाग गए,
क्योंकि उनका स्वभाव था वो प्रकट हो गया।
करेक्ट, अभी तक कंट्रोल रखा था उन्होंने, अमृत जब निकला वो छीन लेकर भाग गए। तो उनका योजना क्या था असुरों का,
कि सारा वही ले ले।
हाँ, सारा खुद ही लेने की इच्छा था। क्या असुर लोगों का योजना था आपस में बांट कर लेने के लिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो असुर का लीडर जो था जयंत, तो वो पकड़ कर लिया, बोला कि मैं अहम पूर्वम नतम इति प्रभु, बोला कि मैं पहले तुम बाद में। तो उसका आइडिया क्या था, पहले मैं पूरा पी लूंगा और काली कलश दे दूंगा दूसरों को, ऐसे सोचकर उसने लिया। और बाकी भी शक्तिशाली असुर थे, वो भी पीछे भागा, उसे कंधों को पकड़ा, हाथ को पकड़ा, खींचा, जितना बल लगा सके वो लगाया।
वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने लगे।
आपस में लड़ाई करने लगे, उनके पार्टी के अंदर ही लड़ाई चालू हो गया। लेकिन उसमें कुछ कमजोर असुर थे, वो सोचा कि हम तो इस स्पर्धा में भाग नहीं ले पाएंगे, वो कोने में बैठ गए। तो ये दो तरह के असुर हैं, शक्तिशाली असुर हैं, कमजोर असुर हैं। कमजोर असुर कम्युनिस्ट पार्टी है, शक्तिशाली असुर कौन है, कैपिटलिस्ट पार्टी है। लेकिन दोनों ने भगवान को भूल गया। आजकल भी देखिए अमेरिका जो है कैपिटलिस्ट है, और रशिया पहले जो था क्या है,
कम्युनिस्ट,
दोनों नास्तिक हैं। इस तरह से दोनों असुर भगवान को भूल कर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो कमजोर असुर बोलने लगे, ए हमने इतना काम किया है, पसीना छूटा, हमको भी देना चाहिए ना, समान करके सबको बंटवा करके खाओ, ऐसे बोल रहे थे कमजोर असुर। और शक्तिशाली असुर ने बोला, माइट इज राइट, देखो शक्ति होता आओ झगड़ा करके ले लो, ऐसे बोला उन्होंने। तो दोनों के बीच में ऐसे चल रहा था, लेकिन देवता लोग दूसरे कोने में बैठ गए, उनको विष्णु के ऊपर पूरा विश्वास था, विष्णु ने जो वचन दिया वो जरूर निभाएंगे, वो पूरा विश्वास था। उस समय क्या हुआ,
तो फिर कृष्ण आए, भगवान आए, मोहिनी रूप धारण,
हाँ मोहिनी रूप में आए भगवान। तभी क्या हुआ जब मोहिनी रूप में आए?
तो जो असुर थे वो आकृष्ट हुए, क्योंकि विषय थे।
करेक्ट। तो वो देखकर आकर्षित हुए, तो उन्होंने पूछा ये इनको, ये मोहिनी मूर्ति को, कि तुम किसके बेटी हो? क्यों वो पूछा उन्होंने? क्योंकि अगर उनको पता चलेगा, उनके पिता का नाम पता चलेगा, तो पता के पास बोलेंगे कि आपके बेटी को शादी में दे दो हमको, ऐसे मांगने के लिए। तो प्रभु जी बोल रहे हैं असुर लोग भी उन दिनों में किसी स्त्री को लेकर बाग नहीं जाते थे, उनके पिताजी के पास जाते थे, ऐसे बोलते हैं प्रभु जी। तो सब असुर ने सोचा कि ये स्त्री मेरे से ही शादी करने वाली है, ऐसे सोच लिया, क्योंकि उन्होंने तिरछी नजर से हर एक राक्षस को देखा उन्होंने ऐसे। तो उस समय क्या किया मालूम है आपको असुरों ने क्या किया उस समय?
फिर असुरों ने मोहिनी से पूछा और फिर कहे कि असुर जो थे वो हर एक असुर चाहता था कि मोहिनी मुझे मिले, मोहिनी हमसे प्रसन्न हो जाए।
करेक्ट।
तो वो उसको प्रसन्न करने के लिए उसको अमृत का कलश देना भी चाहते
वो दे दिया उसको, बोला कि तुम बंटवारा करो,
वो पूरा विश्वास रख दिया
विश्वास रखकर दे दिया उसको। उसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है? सब अमृत किसको मिला?
देवताओं को।
देवताओं को मिला। थैंक यू माता जी, माता जी को हरी बोल बोलिए, हरी बोल। तो अंत में एक श्लोक है उस अध्याय में कि समय, देश, काल, पात्रता, परिश्रम, सब कुछ एक समानता देवताओं का असुरों के बीच में, लेकिन अमृत किसको मिला? देवताओं को मिला। कारण क्या है? वो वचनबद्ध थे, वो भगवान के आदेश को पालन किया उन्होंने। तो इस लीला से हमें पता चलता है कि तो भगवान असुर देवताओं के बीच में भी सहयोग लाया। हमारे अंदर भी असुर प्रवृत्ति है, असुर प्रवृत्ति जैसे माता ने बताया, अच्छी तरह समझा है माता ने। असुर प्रवृत्ति का मतलब है मैं फर्स्ट, आई फर्स्ट एंड अदर्स नेक्स्ट, सब लोग हमारे पीछे। जैसे हम ट्रेन के अंदर घुसते हैं, पहले हम सोचते हैं खिड़की के पास मैं बैठूंगा, बाकी लोग कहीं और भी बैठेंगे, है ना, ऐसे सोचते हैं। इस तरह काते समय भी सब लोग अपने बारे में सोचते हैं पहले। जैसे सर्विंग जो होता है, प्रसाद सर्विंग होता है, तो स्वीट सर्विंग करने वाले बहुत कम कम स्वीट सर्विंग करते हैं, उनको डर होता है कि अगर खत्म हो जाएगा तो हमारा हाल क्या होगा। तो हमारे बम्बई के मंदिर में ऐसे हो रहा था, स्वीट राइस इतना बनाया था, लेकिन वो लोग इतने इतने थोड़ा थोड़ा दे रहे थे, तो किचन ने क्या क्या उनको बोल दिया, देखो तुमको जितना लेना है प्लेट, बड़ा प्लेट बना लो और उसको साइड में रख लो, उसके बाद तुम डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अगले संडे को इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया स्वीट, सब लोग खुश हो गए। तो लोगों ने पूछा कि आपका हाथ इतना बड़ा कैसे हो गया अभी? तो वो बोला कि हमारा भविष्य बड़ा उज्ज्वल है, प्लेट उधर प्लेट रखा हमने ऐसे ऐसे। तो लोग इस तरह अपने बारे में सोचते हैं पहले, लेकिन भक्त का मतलब है भक्त लोग दूसरों को सामने डालता है पहले और अपने को पीछे, क्योंकि भक्त लोग अपने आप को सेवक के रूप में मानते हैं ना? और इस तरह सहयोग का मतलब है हट नहीं करते हैं ना? गुरु के मिशन, प्रभाग मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करो, तुम्हारा मत और मेरा मत, हम दोनों का मत को टेबल में डालेंगे, हम चर्चा करेंगे, कुछ मतभेद हो, जैसे पांच उंगली अलग अलग साइज के हैं, एक छोटा है, बड़ा है, लंबा, लेकिन अलग अलग उंगली का अलग अलग काम है। अब ये उंगली है, हम चैलेंज करते हैं किसी को, है ना, ये उंगली से हम संबोधन करते हैं, ये उंगली में क्या करते हैं, कुछ अंगूठी पहनते हैं, ये उंगली से कभी कभी कान में सफाई करते हैं, हर एक उंगली का काम है। इस तरह टीम में भी क्या होता है, आप लोगों के अंदर अलग अलग क्षमता है, कोई कुकिंग कर सकता है अच्छी तरह, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, तो लोग जब साथ में आकर करते हैं तभी टीम शक्तिशाली हो जाता है बहुत। तो इस तरह हम अनेक चीज़ बता सकते हैं, लेकिन संस्था तभी स्थिर और स्थायी संस्था रहेगा जब भक्त लोग एक दूसरे से मिलजुल कर जुड़कर काम करते हैं, स्पर्धा नहीं करते हैं। इस दुनिया में बड़ा स्पर्धा है मान, नाम और यश के लिए बड़ा स्पर्धा है, तो उसमें हम ना पड़े। भक्त का मतलब है अनासक्त होना चाहिए भक्त को। अब देखिए एक अंतिम चीज़ बोलकर मैं प्रवचन का विराम देना चाहूँगा। ये जो प्रतिष्ठा नारी सदा कुमारी ऐसे बताया जाता है एक कहावत, इसका मतलब क्या है, जो प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, माधवेंद्रपुरी जैसे महान भक्त है, उनको भगवान की भक्ति भी प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होता है न चाहने के बावजूद भी। लेकिन जो प्रतिष्ठा चाहता है व्यक्ति, उसको भक्ति भी नहीं प्राप्त होता है, प्रतिष्ठा भी नहीं प्राप्त होता है। जैसे प्रतिष्ठा नारी जो है वो भगवान के शुद्ध भक्तों के पीछे भागती है वो, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं चाहते हैं प्रतिष्ठा नारी को, वो उससे भाग जाते हैं, जैसे माधव त्रिपुरी भागे। लेकिन प्रतिष्ठा नारी के पीछे हजारों लोग पीछे पड़े हैं, ये प्रतिष्ठा नारी आ जाओ मेरे से शादी करो, लेकिन वो मुड़कर देखती भी नहीं वो उनको, हाँ। इसलिए वो सदा कुमारी बोला गया, वो हमेशा कुमारी रही वो, हाँ। वो शुद्ध भक्तों से भी शादी नहीं कर पाई, और बाकी बदमाश लोग हैं वो लोगों को चुना भी नहीं वो, इसलिए वो सदा कुमारी रही इस दुनिया में। तो ये सहयोग की बात जो चल रहा है अभी, ये बड़ा टॉपिक है, हाँ। इस तरह हम पूना मंदिर के कांग्रीगेशन और विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग के लिए लगभग 50-60 टॉपिक्स हैं, जो हर एक टॉपिक के ऊपर हम 3 घंटा का सेमिनार करते हैं, हाँ। 3 घंटा लगता है, उसके लिए एक्टिविटी होता है, कुछ ड्रामास होते हैं, हाँ। कैसे हम दूसरे भक्तों के लिए ईर्ष्या है उसको त्यागना, कैसे हम सहयोग करना, और कोई अथॉरिटी है सबॉर्डिनेट है उनके साथ बीच में कैसे रिश्ता होना चाहिए, इस तरह अनेक टॉपिक्स के ऊपर भागवत और चैतन्य चरितामृत के ऊपर आधारित हम सेमिनार्स करते हैं। गौर कृष्ण प्रभु की इच्छा है कि इधर भी नागपुर में सब लीडर्स का इस तरह का कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेगुलर होते रहे, ताकि भक्त लोग जो आप लोग ट्रेनिंग लेंगे, उस ट्रेनिंग को दूसरों को भी आप सिखा पाएंगे। आप जैसे भक्ति वृक्ष जो है, इसमें आप लोग अच्छा कल्टीवेशन कर रहे हैं, लेकिन भक्ति वृक्ष लीडर्स को साथ में आना चाहिए, हाँ। वो साथ में आकर उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि उसमें से उनको आध्यात्मिक शक्ति और स्किल्स सब प्राप्त होंगे, और उसको लेकर आप दूसरों को पहुँचा पाओगे बहुत अच्छी तरह, क्योंकि आपको ईच वन टीचर्स वन वाइल बीइंग टॉट बाय वन, ये भक्ति वृक्ष है, हाँ। तो आप दूसरों को सिखाते हो, लेकिन आपको भी सीखने के लिए ऐसे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हाँ। तो आप लोग आकर साथ में, जिस तरह आप लोग 3 दिन के लिए आए हो इधर, इस तरह, हाँ, उससे आपको बड़ा लाभ होगा, और उसमें आप लोग आपस में भी चर्चा कर पाओगे एक दूसरे से, कैसे हम भेदभाव और ईर्ष्या इत्यादि को त्याग कर हम साथ में आकर हम सीखते हैं, तो उससे संबंध और घनिष्ठ होता है, और प्रोजेक्ट का शक्ति और बढ़ जाएगा। उसमें भी चर्चा कर पाओगे एक दूसरे से, कैसे हम भेदभाव और ईर्ष्या इत्यादि को त्याग कर हम साथ में आकर हम सीखते हैं, तो उससे संबंध और घनिष्ठ होता है, और प्रोजेक्ट का शक्ति और बढ़ जाएगा, और जो चीज़ हम अकेले नहीं कर पाएंगे वो हम कर पाएंगे साथ में आकर। श्रील प्रभुपाद की।